بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پویتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9890350654 92। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है, मेहर की 28 और अक्टूबर की 21 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 24 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे और उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र संसार और सभा की अंत में आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति का भविष्य अतीत से ज्यादा उज्जवल है, इमाम जुमा तेहरान आयतुल्ला खातमी। ईरान में उपद्रव बढ़ाने के लिए हो रहा है प्रतिबंधों का प्रयोग, गरीब आबादी। यूक्रेन को बनाया जा रहा है बलि का बकरा रूस। और भारत में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कार्रवाई का दिया निर्देश। तो अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेहरान के इमाम जुमा ने कहा है कि इस्लामी क्रांति का भविष्य अतीत से ज्यादा उज्जवल है। उन्होंने कहा है कि दुश्मनों द्वारा की जाने वाली साजिशें कभी भी इस्लामी क्रांति के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के अस्थाई इमाम जुमा आयतुल्ला सैयद अहमद खातमी ने हालिया दिनों में देश में होने वाले दंगों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ईरान के दुश्मनों ने हमारे राष्ट्र के संबंध में बड़ी बड़ी साजिशों को तैयार कर रखा था, लेकिन उनके सारे षड्यंत्र मिट्टी में मिल गए। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र को लेकर दुश्मन जो सपने देख रहा था वो एक झटके में ही चकनाचूर हो गए। आयतुल्ला खातमी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से दुश्मन अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब जब दुश्मन ने इस्लामी क्रांति के खिलाफ आग भड़काने की कोशिश की है, तब तब अल्लाह ने उस आग को बुझाया है। आयतुल्ला खातमी ने कहा कि जब तक हम अपने धर्म और इस्लामी क्रांति के प्रति पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे, तब तक दुश्मनों की साजिशें और उनके द्वारा ईरानी राष्ट्र पर किए जाने वाले अत्याचारों का सिलसिला जारी रहेगा। काजिम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका और यूरोप ईरान में उपद्रव और अशांति बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की न्यायपालिका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप सचिव ने कहा है कि देश के शत्रु हर दिन ईरान के भीतर कोई ना कोई नया संकट उत्पन्न करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश के दुश्मन कभी कॉलेज और स्कूल का रुख करते हैं तो कभी यूनिवर्सिटी का और कभी वे जेल का भी रुख करते हैं। काजिम गरीब आबादी ने यह बात तेहरान के एवेंजेल की घटना के संदर्भ में कही। उन्होंने बताया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के शत्रु षड्यंत्रों और दुष्प्रचारों की मशीन को बंद नहीं होना देना चाहते। वे इस पर 24 घंटे काम करते हैं। गरीब आबादी के अनुसार ये किसी छोटे से मुद्दे को तिल का ताड़ बना देते हैं। उनका कहना था कि एवेंजेल के बारे में शत्रुओं के पास पहले से योजना तैयार थी, हालांकि संबंधित अधिकारियों की सूझबूझ और देश के संचार माध्यमों की सक्रियता के कारण वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। उनकी योजना तो बहुत गहरी थी किंतु व्यवहारिक नहीं हो पाई। सऊदी अरब के एयरपोर्टों पर मौजूद ड्यूटी फ्री शॉप में शराब बेचने और पीने की इजाजत दिए जाने पर आले सऊद शासन गंभीरता से विचार कर रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अरब बिजनेस वेबसाइट के हवाले से ये बात सामने आई है कि आले सऊद शासन लंबे समय से सऊदी अरब में शराब से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। आले सऊद शासन शराब को आम किए जाने की अपनी योजना के पहले चरण की शुरुआत इस देश के एयरपोर्टों से करना चाहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत जल्द सऊदी अरब के एयरपोर्टों पर मौजूद ड्यूटी फ्री दुकानों में शराब को बिकते हुए देखा जा सकता है। साथ ही शराब का सेवन करने वाले लोगों को इस बात की इजाजत होगी कि वो वहां बैठकर उसको पी सकें। फिलिस्तीन। ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने दूतावास को बैतुल मुकद्दस न ले जाने के फैसले का स्वागत करते हुए जॉर्डन की संसद ने इसकी सराहना की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री वोंग ने मंगलवार को कहा था कि देश की सरकार ने पिछली सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया है कि बैतुल मुकद्दस इसराइल की राजधानी है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने बैतुल मुकद्दस में अपना दूतावास स्थानांतरित करने का फैसला टाल दिया है। इस संबंध में जॉर्डन की संसद ने एक बयान जारी करके घोषणा की है कि ये काम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के प्रति उसके सम्मान का सूचक है। रूस ने कहा है कि हमसे मुकाबले के लिए नेटो यूक्रेन को बलि का बकरा बनाए हुए है। मास्को का कहना है कि रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठनों में रूस के प्रतिनिधि ने बताया कि रूस का मुकाबला करने के लिए नेटो ने यूक्रेन को दांव पर लगा रखा है। मैक्सिमन बाया किविच ने कहा कि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यूक्रेन की आड़ में यूरोपीय वास्तव में रूस का मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेटो की प्रतिनिधि यूक्रेन युद्ध अंत तक जारी रहे ताकि रूस का मुकाबला किया जाए, चाहे यूक्रेन तबाही क्यों ना हो जाए। फ्रांस प्रेस के अनुसार रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने गुरुवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंधों के संदर्भ में कहा है कि रूस को ड्रोन देने जैसे निराधार दावे के आधार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध निंदनीय हैं। मारिया जाखारोवा ने इस बयान के एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने एक संवाददाता सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान द्वारा रूस को ड्रोन भेजे जाने के दावे को निराधार बताया था। उधर अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कुछ पश्चिमी संचार माध्यमों के इस दावे की पुष्टि नहीं की है कि ईरान रूस को ड्रोन विमान भेजना चाहता है। याद रहे कि पिछले कुछ समय से अमरीका सहित पश्चिमी देश ईरान पर रूस को ड्रोन भेजने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसका खंडन ईरान के अधिकारियों की ओर से किया जाता रहा है। फ्रांस में महंगाई से परेशान होकर इस देश की जनता राष्ट्रपति एम्यूनुएल मैक्रों की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इसके साथ ही लोग जलवायु संकट को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में बढ़ती महंगाई को लेकर भारी गुस्सा है। 3 हफ्तों से जारी हड़ताल के चलते लोगों को ईंधन की दिक्कत हो रही है। लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त किया है और राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। प्रदर्शन का आयोजन करने वालों ने महंगाई के साथ ही जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा उठाया है। वहीं फ्रांसीसी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोलों समेत इलेक्ट्रिक शॉक तक के हमले किए हैं। पुलिसी कार्रवाई में भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायल होने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने गुरुवार को निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रेस के इस्तीफे की घोषणा के बाद देश में आम चुनाव कराने की बात कही है। ब्रिटेन में निचले सदन में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने कहा है कि इधर कुछ समय से ब्रिटेन की जो राजनीतिक स्थिति है उसे जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को बेहतर चाहिए। ब्रिटेन अब कंजर्वेटिव पार्टी की अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अब आम चुनाव की आवश्यकता है। अब रुख करते हैं भारत का। हेट स्पीच को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करे। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हेट स्पीच के मामलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इस बीच हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है या तो वो कार्रवाई कीजिए नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेट स्पीच को लेकर आरोप गंभीर हैं। भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पेश करता है। देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में आईपीसी में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है। हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस स्वेच्छा संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लापरवाही हुई तो असरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के समाचारों का यहीं पर विराम देते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, इमरान खान अयोग्य करार दिए गए और भारत नियंत्रित कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री से सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया। तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस्तीफे का विषय। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस 6 हफ्तों के बाद त्याग पत्र देने पर मजबूर हो गई। पिछले दिनों उनकी सरकार एक आर्थिक पैकेज लेकर आई थी जिसने बाजार में उथल पुथल मचा दी थी। उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के केवल 45 दिन बाद ही अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि उनकी पार्टी कंजर्वेटिव आपस में ही विभाजित हो गई थी और उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे थे। एक समीक्षा पेश कर रहे हमारे साथी कायम रिजवी।
पिछले कुछ दिनों से
जारी उथल पुथल के बीच ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। लिस्ट्रस ने सत्ता संभालने के महज 45 दिनों के बाद अपना पद त्याग दिया। लिस्ट्रस ने गुरुवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे रही हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों उनकी सरकार एक आर्थिक कार्यक्रम लेकर आई थी जिसने बाजार में उथल पुथल मचा दी थी। उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के महज 6 हफ्तों के बाद ही उनकी कंजर्वेटिव पार्टी विभाजित हो गई थी। पार्टी में नेतृत्व का चुनाव अगले सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस के दरवाजे के बाहर बात करते हुए ट्रस ने स्वीकारा कि जब वो कंजर्वेटिव नेता की दौड़ में थी तो उन्होंने जो वादे किए थे वे उन्हें पूरा नहीं कर सकी और अपनी पार्टी का विश्वास उन्होंने खो दिया। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए मैं ये मानती हूँ कि मैं जनादेश पूरा नहीं कर सकती जिसके लिए मुझे कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा चुना गया था, इसलिए मैंने महाराज चार्ल्स से बात करके उन्हें सूचित कर दिया है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि सुबह मैं 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी से मिली थी। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि नेतृत्व का चुनाव अगले सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ये सुनिश्चित करेगा कि हम अपनी वित्तीय योजनाओं को पूरा करने और अपने देश की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के रास्ते पर बने रहेंगे। ट्रस केवल 45 दिनों के लिए ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये सबसे छोटा कार्यकाल है। ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी। 6 सितंबर को दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिस ट्रस को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 5 सितंबर को विदेश मंत्री रही ट्रस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हरा दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में 6 सप्ताहों में ट्रस को अपने लगभग सभी नीतिगत कार्यक्रमों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वहीं पिछले शुक्रवार को उन्होंने अपनी सरकार के 4 सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से 2 को खो दिया। बुधवार को ही भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री ब्रेवरमैन ने लंदन में मंत्री स्तरीय संचार के लिए अपने निजी ईमेल का इस्तेमाल करने की गलती के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले शुक्रवार को क्वासी क्वार्टेक को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया था और उनके उत्तराधिकारी वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सोमवार को सरकार के मिनी बजट में कटौती कर दी थी। इस कदम से प्रधानमंत्री के नेतृत्व के लिए संकट और बढ़ गया था। एक वरिष्ठ मंत्री के इस्तीफे और संसद के निचले सदन में सदस्यों द्वारा जमकर आलोचना के गुरुवार के घटनाक्रम के बाद ट्रस के पद पर बने रहने को लेकर संशय पैदा हो गया था। गौरतलब है कि पिछले महीने सरकार ने एक आर्थिक योजना पेश की थी जिसके असफल होने के कारण आर्थिक उथल पुथल और राजनीतिक संकट पैदा हो गया। इसके बाद ट्रस को वित्त मंत्री बदलने के अलावा अपनी कई नीतियों को भी उलटना पड़ा। साथ ही उनके कार्यक्रम के दौरान सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में अनुशासनहीनता भी देखने को मिली। कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेताओं का कहना था कि ट्रस को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफे से पहले ऐसी खबरें भी थीं कि जनमत सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जिसके मद्देनजर कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेताओं का मानना था कि ट्रस को हटाकर ही कोई उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वे इस बात को लेकर बटे हुए थे कि उन्हें कैसे हटाया जाए।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से प्रशासन ने कहा है कि सरकारी बंगला छोड़ दें क्योंकि वो सरकार की संपत्ति है। और भी अन्य विषयों के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
मेनस्ट्रीम गुटों के गठबंधन गुपकार एलायंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति करना जानती है, परंतु उन्हें हम बताना चाहते हैं कि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। श्रीनगर में गुपकार एलायंस के प्रवक्ता ने कहा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष है, को अपना निवास खाली करने के जो आदेश सामने आए हैं, उसे ये संकेत मिल रहे हैं कि जो नई दिल्ली की लाइन टो नहीं करेगा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं, परंतु ये राजनीति नहीं है जो जम्मू कश्मीर में की जा रही है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से कहा है कि वो ऑफिशियल रेजिडेंस को वैकेट करें, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने लोगों से मिलने और आउटरीच के तहत केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में लाने का जो प्रोग्राम आरम्भ कर रखा है उसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और इसी हवाले से जम्मू के राजौरी में एक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने आम नागरिकों से बात की और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसी समय ऑर्डर भी जारी कर दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
कार्यों के इनॉग्रेशन किए, जनप्रतिनिधियों से और लोगों से मुलाकात का मेरा कार्यक्रम है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए जनप्रतिनिधि और कुछ रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। लोगों ने 70 साल की अपनी पीड़ा के बारे में भी बताया और आज भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, उनको बहुत सारी उम्मीद है। उन्होंने अपने गांव के और इस क्षेत्र की जो डिमांड है, जो समस्याएं हैं, उनके संबंध में जानकारी दिया है। मैं अभी अधिकारियों से इसके संबंध में बात करूंगी और जो डिमांड इन लोगों ने दिया है इसको मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालय तक पहुंचाऊंगी और यही काम करने के लिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने भेजा है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसा घटनाओं का क्रम जारी है। दक्षिणी कश्मीर में अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों एक व्यक्ति के हताहत होने की सूचना है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है। एक समीक्षा के साथ साथी रविश जैदी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने संपत्ति छुपाने के आरोप में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आयोग घोषित कर दिया। दरअसल सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के समक्ष में इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने राज के भंडार से, जिसे तूशे खाने कहा जाता है, रियायती मूल पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा करने में विफल रहने के लिए उन्हें आयोग करने की मांग की थी। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में इमरान खान के खिलाफ फैसले की घोषणा की। चुनाव आयोग के फैसले में कहा गया है कि इमरान खान को झूठा बयान जमा कराने पर आर्टिकल 63(1)(p) के अंतर्गत आयोग करार दिया गया है। इस फैसले के अंतर्गत इमरान खान को नेशनल असेंबली के डीसेट कर दिया गया है और उनकी सीट खाली करार देकर चुनाव आयोग उपचुनाव आयोजित कराएगा। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में इमरान खान को जनप्रतिनिधि के लिए आयोग करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपनी संपत्ति के बारे में सच्चाई छिपाने और सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए झूठे बयान जमा कराए। फैसले में कहा गया है कि झूठ बोलने पर इमरान खान जन प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं रहे। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में इमरान खान के विरुद्ध फौजदारी की कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है। इमरान खान के विरुद्ध चुनाव आयोग का फैसला आते ही पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और सरकार तथा चुनाव आयोग के विरुद्ध नारे लगाए। ज्ञात रहे कि इमरान खान ने तूशे खाने रेफरेंस के संबंध में 7 सितंबर को चुनाव आयोग में अपना लिखित जवाब जमा कराया था। जवाब के अनुसार 1 अगस्त 2018 से 31 ستمبر 2021 کے دوران پردھان منتری اور ان کی پتنی کو 58 تحفے دیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان اپہاروں میں زیادہ تر پھولوں کے گلدان، میز پوش، سجاوٹی سامان، دیوار، والٹ، پرفیوم، فریم، گھڑی، پین، انگوٹھی، بریسلیٹ اور لاکٹس اتیادی سامان شامل ہے۔ جواب میں بتایا گیا ہے کہ ان سب اپہاروں اور تحفوں میں کیول 14 چیزیں ایسی تھیں جن کے مولیہ 30,000 روپے سے زیادہ تھے، جسے انہوں نے ادھیکارک روپ سے پیسے جمع کرا کے خریدا۔ اپنے جواب میں عمران خان نے سویکار کیا تھا کہ انہوں نے پردھان منتری کے روپ میں اپنے کاری کال میں 4 تحفے بیچے تھے۔ پاکستان کے پورو پردھان منتری کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2,16,00,000 روپے کی ادائیگی کے بعد سرکاری خزانے سے تحفے بیچ کر لگ بھگ 5,80,00,000 روپے حاصل کیے۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، ابھی آپ کارکرم راجنیتک چرچا ہمارے ساتھی اختر عباس سے سن رہے تھے۔ اب آپ سنیں گے کارکرم پتر سنسار۔
پتر سنسار۔ دوستوں، کارکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے۔ اپنی دیدی مریم مہر دادی
اور بھیا احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سکشل ہوں گے اور اپنا من پسند کارکرم سننے کے لیے تیار ہوں گے۔
دیدی، آج بھی آپ کے ای میل، آپ کے کمنٹس اور آپ کے وچار کارکرم پتر سنسار میں شامل کریں گے۔
جی، تو سب سے پہلے رجنیش کمار کا ای میل ہے یہ۔ مہدی مٹھ کرنول بھارت ریڈیو شروتا سنگھ سے ہیں یہ۔
جی،
لکھتے ہیں کہ آج کل آپ کے پرسارن ہم نیمت پوروک سن رہے ہیں اور ریڈیو پر 25 میٹر بینڈ یعنی 11,860 کلو ہرٹس پر پرسارن صاف سنائی دے رہے ہیں۔ شکروار کو وشو سماچار اور راجنیتک چرچا کے ساتھ ساتھ پتر سنسار وگیان کی ڈگر کا کارکرم سنا، جس میں پتر سنسار کے تحت بھلائی چھتیس گڑھ کے آنند موہن جی اور گوراڈی بھاگلپور کے ہیمنت کمار جی کے دوارا پتروں میں لکھے گئے وچار کو سنا، اور ساتھ ہی ساتھ وگیان کی ڈگر کے تحت وگیان کے کھیتر میں ایران میں ہو رہی ترقی اور لسمینیاسس روگ کیا ہے اور اس کے ہونے کے کارن کیا ہے، اس سمسیا کے بارے میں چرچا کی گئی جو مجھے کافی گیان وردک لگی۔ اس کے لیے آپ سبھی کو کوٹی سا دھنیواد۔
بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم پتر سنسار میں، اور جس وستار پوروک، جس دھیان سے آپ کارکرموں کو سن رہے ہیں اور اس پر اپنی ٹپنی اور اپنے وچار دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اتساہ وردک ہے۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں۔ پتراچار اسی طرح سے بنائے رکھیے اور سجھاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیے۔
جی، گرام جسواڑی، ضلع کھنڈوا، مدھیہ پردیش سے درگیش ناگنپورے لکھتے ہیں کہ ہماری اور سے ریڈیو تہران ہندی سیوا کی پوری ٹیم اور سبھی شروتا بندوں کو میلاد النبی کی دلی مبارکباد اور بدھائیاں۔
بہت بہت آپ کو بھی بدھائی ناگنپورے جی، ہمارے نیمت شروتا ہیں، پرانے شروتا ہیں، اور ایک یہ رشتہ دیدی بہت پرانا چلا آ رہا ہے کارکرم پتر سنسار کے ساتھ بھی اور پورے ریڈیو ہندی ریڈیو تہران کے ساتھ ہی یہ رشتہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بہت سے اس طرح کے شروتا ہیں جو ہم سے اب لگ بھگ 2 دشک سے زیادہ کا سمے ہو رہا ہے کہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ 7 ہفتے قائم ہے۔ ناگنپورے جی، آپ کا بہت بہت دھنیواد اور آپ کو بھی بہت بہت بدھائی۔ تو کارکرم کے اس بھاگ میں اب ہم سنیں گے ایک سانسکرتک خبر۔ دیدی ہر ہفتے کے لیے ایک خبر چن کے لاتی ہیں جو ہمیشہ بڑی روچک اور ساتھ ہی گیان وردھک ہوتی ہے۔
جی، اس بار بھی بہت ہی روچک ہے۔ हम देखने जा रहे हैं ईरान में सबसे पुरानी मानव बस्ती कहाँ है।
जी,
कज़विन के उत्तर पश्चिमी प्रांत आवाज शहर में कलेकोर्द केव यानी कलेकोर्द गुफा में ईरानी और फ्रांसीसी पुरातत्व टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए हाल ही के उत्खनन के परिणाम बताते हैं कि गुफा के आसपास के सांस्कृतिक भंडार 400,000 से भी अधिक वर्षों से हैं। ये ईरान में खोजी गई सबसे पुरानी मानव बस्ती है। उत्खनन का नेतृत्व करने वाले हमीद वाहदती नस्साब ने कहा कि ईरान और फ्रांसीसी टीमों द्वारा संयुक्त उत्खनन का ये तीसरा सत्र है जो पेरिस में मानव विज्ञान संग्रहालय के प्रोफेसर गिल्स ब्रिलन के सहयोग से आयोजित किया गया था। वाहदती नस्साब ने खुदाई के इस सीजन में परतों की उम्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सांस्कृतिक सामग्री के डेटिंग के परिणाम जो पेरिस में मानव विज्ञान संग्रहालय के एक प्रयोगशाला में भेजे गए थे 160,000 210,000 और 400,000 से अधिक उम्र की तीन बस्तियां कलेफोर्ड के गुफा में मौजूद हैं
जी,
जो इसे ईरान का सबसे प्राचीन पुरातत्व स्थल बनाती है। वाहदती नस्साब ने कहा कि नवीनतम निष्कर्ष और गुफा में खोजे गए औजारों से पता चलता है कि गुफा अन्य मनुष्यों के लिए एक बस्ती के रूप में थी। अब तक दो प्रकार के विलुप्त प्रागैतिहासिक घोड़े हिरण भूरा भालू और गेंडा क्षेत्र में खोजी गई पशु प्रजातियों में से हैं। खुदाई के पर्यवेक्षक ने कहा कि आधुनिक मनुष्य का निचला जबड़ा और विलुप्त लकड़बग्घा की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा जिसे लकड़बग्घा गुफा कहा जाता है जो 11,000 से 500,000 वर्षों के बीच पृथ्वी पर मौजूद अन्य खोजों में से थे और पहली बार ईरान से रिपोर्ट की गई है।
जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक खबर के लिए। कुछ भौगोलिक स्थितियां कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि और ज्यादा इसके बारे में बताने की
खुदाई चल रही है।
श्रोताओ, संस्कृति से जुड़ी इस खबर के बाद अब बारी है कमेंट्स की। आप जो कमेंट्स करते हैं हमारी वेबसाइट में खबरों पर या दूसरी सामग्रियों पर।
जी, ईरान में दंगाइयों का समर्थन, अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध, इस पर हुसैन मेहदी लिखते हैं ये विश्व को सब मिशन के लिए मजबूर करने के बारे में है, न केवल ईरान, रूस, चीन, यूरोप, अरब, वेनेजुएला, इथोपिया और हर जगह। जिस समय वे इस तेल मुद्दे पर सऊदी अरब को धमका रहे हैं, वैसे यमन पर समझौता न करने का आदेश दे रहे हैं, जिसे उन्होंने यूक्रेन को चलते रहने का आदेश दिया था। यदि अमेरिका अमेरिकी उपभोक्ताओं के बारे में चिंतित था और वे भोजन और ईंधन के लिए क्या भुगतान करते हैं, तो ये यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं करता।
जी, बहुत सही बात कही है। अमेरिका ने कई ऐसे कदम उठाए हैं कि अब तो खुद अमेरिका के जो घटक हैं यूरोपीय देश, वो भी शिकायतें करने लगे हैं कि अमेरिका हालात का गलत फ़ायदा उठा रहा है। यूरोपीय देशों को अमेरिका ने गैस देने की बात कही है, क्योंकि यूरोपीय देशों में गैस का संकट पैदा हो गया है, लेकिन गैस जो वो दे रहा है वो 4 गुना ज़्यादा कीमत पर दे रहा है। यानी अमेरिकन जिस कीमत में गैस लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यूरोपियंस को 4 गुना ज़्यादा कीमत पर अमेरिका देना चाहता है, जिस पर यूरोपियों ने भी एतराज़ किया है। तो यूरोपीय तो अमेरिका के घटक को बड़े करीबी घटक समझे जाते हैं, तो जब उनके साथ अमेरिका का ये रवैया है तो दूसरे देशों के साथ उसका क्या रवैया हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि दुनिया की आँखें खुल रही हैं, अमेरिका की वास्तविकता से दुनिया ज़्यादा वाकिफ होती जा रही है।
अपनी सीमा पर 3,000 आतंकियों को सहन नहीं करेंगे, जनरल बाकरी। इस पर अली इराकी लिखते हैं किराए के उन आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ उत्कृष्ट उपक्रम और शानदार स्टैंड के लिए ईरान को बधाई।
जी, इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इस दौरान जब हालिया हफ्तों में ईरान में कई जगहों पर अशांति की घटनाएं हुई, प्रदर्शन शुरू हुए और प्रदर्शन हिंसक हो गए और फिर उसमें विदेशी तत्व, बाहरी तत्व और अलगाववादी संगठन, आतंकी संगठन जो कि कई दशकों से ईरान के खिलाफ सक्रिय हैं, वो कूद पड़े और उन्होंने अपना एजेंडा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस बीच ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा अहम कारनामा और बहुत साहसिक कदम एक ये उठाया कि ईरान से लगे इराकी कुर्दिस्तान इलाके में आतंकी संगठनों और अलगाववादी आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे उन पर मिसाइलों की बरसात कर दी, क्योंकि ये आतंकी उन ठिकानों के भीतर से बैठ के ईरान में अशांति फैला रहे थे, हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कार्रवाई बहुत बड़ी रही और इसका बड़ा असर हुआ, जिस पर ईरान की आर्म्ड फोर्सेस बधाई की पात्र हैं। और श्रोता, अब बारी है आप में से एक सम्मानीय श्रोता के विचार सुनने की। दीदी हर हफ्ते किसी न किसी श्रोता का चयन करती हैं और हम उनके मूल्यवान विचार सुनते हैं और उससे अवगत होते हैं।
जी, तो ये है हमारे बहुत ही पुराने श्रोता छत्तीसगढ़ पंधी से साहू
जी।
नमस्कार, मैं साहू ग्राम पोस्ट पंधी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से IRIB रेडियो तेहरान हिंदी सेवा का एक श्रोता हूँ। मैं पहले यह प्रसारण रेडियो पर सुना करता था, परंतु अब मोबाइल ऐप से सुनता हूँ। मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनना सहज, सरल और सुविधाजनक तो है, किंतु वह आनंद, वह संतुष्टि जो रेडियो से मिलती थी वह ऐप से नहीं मिलती है। जो सुख एवं आत्मीयता पोस्ट कार्ड में है वो ईमेल में नहीं है। रेडियो तेहरान की बात करूँ तो समाचार, राजनीतिक चर्चा, आजकल एवं विश्व दर्पण में घटनाओं के विवेचनात्मक, ठोस, विस्तृत एवं निर्भीक प्रस्तुति पत्रकारिता का एक उदाहरण है। अन्य स्रोतों से भारतीय कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं मिलता, किंतु रेडियो तेहरान से भारतीय कश्मीर पर नित्य रिपोर्टिंग का काम रेडियो तेहरान का भारतीय कश्मीर के प्रति रुचि को दर्शाता है। धर्म ईश्वर के कथनों पर रुचि लेता हूँ। कुरान ईश्वरीय चमत्कार सुनकर शांति मिलती है, किंतु समाचार सुनकर दुखी हो जाता हूँ। जैसे कि सामान्य ज्ञान में बताया जाता है कि नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा, किंतु यह भ्रम भी आज का इतिहास ने तोड़ दिया। अंत में यही कहना चाहूँगा कि रेडियो तेहरान के सभी उद्घोषक समर्पित, परिश्रमी, मृदु एवं मधुभाषी है। रेडियो तेहरान में शुद्ध हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग एवं शब्दों के शुद्ध उच्चारण किया जाता है, इसके लिए रेडियो तेहरान बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद
जी। दीदी, तो बड़े अच्छे विचार सुने हमने साहू जी के। हमारे पास थोड़ा सा समय बच गया है जिसमें आप कोई कमेंट शामिल कर सकती हैं।
जी, राष्ट्रपति ने बताया ईरान ने किन देशों की किन हालात में मदद की। इस पर जहरा आवेदी कहती हैं, ईरान के कुछ दुश्मन इस शांतिपूर्ण राष्ट्र को किसी भी चीज़ से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास किसी अन्य प्रकार का आतंकवाद नहीं है जिसकी उन्होंने ईरान के खिलाफ कोशिश नहीं की है। इतनी गहरी अपनी कब्र खोदते रहते हैं। ईरान एक शांति दूत देश है और शांति भंग करने वाला देश नहीं है।
जी, इस्लामी जमहूरी ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिस इलाके में स्थित है, इसे बड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। संवेदनशील इसलिए कि यहाँ पर संसाधन बड़े महत्वपूर्ण हैं और बहुत व्यापक रूप से मौजूद हैं, जिन पर दुनिया की बड़ी ताकतों और विशेष रूप से साम्राज्यवादी ताकतों की गहरी और ललचाई नज़र दशकों से लगी हुई है। ये ताकतें इस इलाके को हमेशा मैनेज करने की कोशिश करती हैं और इसके लिए मोहरे सेट करती रहती हैं कि किस तरह से मोहरों को लामबंद किया जाए कि ये पुराना इलाका और इस इलाके और वहाँ के संसाधनों से जुड़े फैसले इन ताकतों, खासतौर पर अमेरिका की इच्छा और मर्जी के अनुसार हो सकें। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ने यहाँ पर क्रांति आने के बाद, अब जब नई व्यवस्था आई तो उसके बाद इन साजिशों, इन मंसूबों और इन नीतियों को नाकाम बनाया और इलाके के भीतर स्वाधीनता की रूहों की और कई संगठनों की मदद की जो अपने पैरों पर खड़े होकर अमेरिकी वर्चस्ववाद का विरोध कर रहे हैं और लगातार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। तो दीदी, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो गया, श्रोताओं से अनुमति दे लेते हैं। तो श्रोताओं, अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र संसार दीदी मरियम और भैया अहमद अब्बास से, और अब आपकी सेवा में आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर पेश है।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर के करने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में ईरान और दुनिया में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जंजान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्टार्च और टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो कणों से युक्त एक बायो डिग्रेडेबल नैनो कंपोजिट की खोज की है, जिसका उपयोग खाद्य पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है। समुद्र खाद्य और पेय पदार्थों की पॉलीमर पैकेजिंग के एक बड़े भाग से पर्यावरण प्रदूषण अस्तित्व में आता है। ये डिग्रेडेबल पैकेजिंग प्रदूषकों का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन डिग्रेडेबल सामग्री का उत्पादन महंगा है और खाद्य पदार्थों की अंतिम कीमत को बढ़ा देता है।
पॉलीमर पैकेजिंग किसे कहते हैं? पेट्रोलियम आधारित सामग्री के बदले जैव पॉलीमेरिक सामग्री के विकास का अत्यधिक महत्व रहा है। पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग आमतौर पर पैकेजिंग में किया जाता है, क्योंकि वे कुछ विशेषताओं जैसे कुछ हद तक मजबूत, पारदर्शी, कम लागत और हल्के वजन के होते हैं। हालांकि पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री आसानी से नष्ट नहीं होती है और ये धरती पर ठोस कचरे के रूप में एकत्र होने से एक गंभीर समस्या के रूप में देखी जा रही है।
इस तरह के प्लास्टिक के हमारे पर्यावरण में हानिकारक परिणाम सामने आए हैं और इसे एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में 12% प्लास्टिक होता है और इस कचरे को जलाने के बाद हानिकारक जहरीली गैसें जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरान और मरकरी तथा पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनॉल वातावरण में मिल जाती हैं।
इस परियोजना के शोधकर्ताओं के अनुसार इस प्रकार की पैकेजिंग के विकास में कमी का मुख्य कारण पॉलीमर पैकेजिंग की तुलना में बायोडिग्रेडेबल सामग्री की उच्च कीमत और उनकी कम क्षमता है। इस परियोजना में बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों की उत्पादन लागत को काफी कम करने के लिए स्टार्च और टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो कणों से युक्त एक नैनो कंपोजिट का उत्पादन किया गया था, जो अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों की तुलना में सस्ता और अधिक कुशल है। व्यवसायीकरण के मामले में इस पैकेजिंग सामग्री के प्रत्येक किलोग्राम की कीमत प्रत्येक किलोग्राम स्टार्च की कीमत से लगभग 15% अधिक होगी। ये पर्यावरण और धूप में भी तेजी से खराब होता है।
दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए तथा प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित की है, जिसके उपयोग पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ग्वार गम और चिटोसन का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विकसित किया है। ये पॉलीमर ग्वार बीन्स केकड़े और झींगा से निकाले गए पॉलीसेकेराइड से बना है। इसमें पानी को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये पानी से खराब नहीं होता। ये ग्वार गम कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में पैकेजिंग के उपयोग के लिए बहुत अच्छा है।
जंजान विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्य के अनुसार फोटोकैटालिटिक गुणों वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोकणों की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बदले पैकेजिंग नष्ट हो जाती है। इसके अलावा नैनो कंपोजिट की संरचना में इन नैनोकणों की उपस्थिति पैराबैंगनी प्रकाश द्वारा एक साथ संशोधित और कीटाणु रहित होने की क्षमता को प्रेरित करती है। शोधकर्ता के अनुसार इस परियोजना में कई भौतिक रासायनिक परीक्षणों जैसे नमी सामग्री परीक्षण, जल अवशोषण, जल घुलनशीलता, संपर्क कोण और जल बाष्प इत्यादि से उत्पादित पैकेजिंग गुणों का मूल्यांकन करने के लिए पैकेजिंग सामग्री को उपयोग किया जाता है। इस शोध के परिणाम 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रकाशित हुए हैं।
नैनो कंपोजिट एक मल्टीफेज ठोस सामग्री है जहां एक चरण में 100 नैनोमीटर अर्थात NM से कम एक दो या तीन आयाम होते हैं। यह सामग्री बनाने वाले विभिन्न चरणों के बीच नैनो स्केल दोहराने की दूरी वाली संरचनाएं होती हैं। नैनो कंपोजिट के पीछे का विचार नैनोमीटर रेंज में आयामों के साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करना है ताकि अभूतपूर्व लचीलेपन और उसके भौतिक गुणों में सुधार के साथ नई सामग्री को डिजाइन किया जा सके और उसे बनाया जा सके।
ईरान के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने चीन में 2018 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण प्रतियोगिता जीती। ईरान के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय ने 2018 में आयोजित चीन के डिजाइनिंग और विनिर्माण वैज्ञानिक कार्यों की आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मैजिक ग्लास को पेश करके खूब सुर्खियां बटोरी और फिर इनको विजेता के रूप में चुना गया।
इस प्रतियोगिता में ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और केन्या सहित दुनिया के 20 देशों को व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रदर्शनी दिखाने और प्रदर्शनी के पहलुओं को समझाने के लिए चुना गया। ये प्रतियोगिताएं वैज्ञानिक ज्ञान पर विश्व सम्मेलन के मौके पर आयोजित की जाती हैं। इसमें अल इल्मुल हिल अर्थात द साइंस ऑफ डिसेप्शन पर चर्चा की जाती है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की श्रेणी में आता है और ये यांत्रिक और हाइड्रोलिक उपकरणों पर चर्चा करता है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय द्वारा अल हिल पुस्तक में कई डिजाइनों का पुनर्निर्माण किया गया है।
आजाद विश्वविद्यालय की अलबुर शाखा के एक नॉलेज बेस्ड कंपनी के शोधकर्ताओं ने कार टैकर्स की डिजाइनिंग, निर्माण और निर्यात करने में सफलता प्राप्त की। अलबुर्ज आजाद विश्वविद्यालय के अनुसंधान के कुलपति के अनुसार इस टैकर का उपयोग करके जिसे कार में स्थापित किया जा सकता है, कार के समय, स्थान, गति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ये कार ट्रैकर दूर संचार नेटवर्क या GPRS सिस्टम द्वारा मैसेज भेजने और संपर्क को कॉल करने की अनुमति देता है। यह आपको 20 उपग्रह चैनलों से जानकारी प्राप्त करने और स्थान दिशे निर्देशांक द्वारा उन्हें सर्वर पर एक साथ ऑनलाइन मैसेज भेजने और वाहन को कहीं से भी कहीं भी नियंत्रित करने और ट्रैक करने के लिए मानचित्र पर मिलाने की अनुमति देता है।
ट्रैकर कार मालिक की चोरी के समय कार द्वारा तय की गई दूरी के बारे में भी संदेश भेज सकता है। साथ ही इस उपकरण के माध्यम से उस मार्ग के यातायात की रिपोर्ट करना संभव है जिसे व्यक्ति चुनने का इरादा रखता है।
दोस्तों, यूनिवर्सिटी के वॉइस چانسلر فار ریسرچ کے مطابق اس کار ٹریکر کا ایک اور ایپلیکیشن یہ ہے کہ کار کے ساتھ اپکرن اور ڈیوائس کو استھانانترت کرنے والی کمپنی یا سنگٹھن اس سسٹم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ واستو میں سنگٹھن کا پربندھک یا نینترک ڈرائیور کے راستے کو ٹریک کر سکتا ہے۔ یہ ٹریکر کمپنی یا سنگٹھن کے پربندھک کو آن لائن یاترا کی گئی گتی، استھان اور دوری کی رپورٹ پردان کرتا ہے۔ اس ٹریکر سے کار کی سرکشا بڑھ جاتی ہے۔ اس ٹریکر سے کار کی سرکشا بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سسٹم میں وائرلیس طریقے سے ایکسیسریز جوڑنے کی بھی کشمتا ہے، اور کار ٹریکنگ سسٹم کے لیے کسی وشیش سرور اور پینل کی آوشکتا نہیں ہوتی۔ اس ایرانی کار ٹریکر کی قیمت ودیشی ماڈل کی تلنا میں بہت کم ہے، اور اسے ایران کی استھتیوں اور اس دیش میں اپلبدھ کاروں کی وشیشتاؤں کے آدھار پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ڈیوائس کار کی بیٹری سے کنیکٹ کیے بنا کام کرتا ہے۔ اس میں اچھ اینٹینا شکتی ہوتی ہے کہ سامان باہری ماڈل میں یہ وشیشتائیں عام طور پر نہیں ہوتی۔ اس ٹریکر کے ذریعے کار کیبن کے ساتھ وائس کمیونیکیشن دینا بھی سمبھو ہے۔ یہ ڈکٹیٹر اتپادن تک پہنچ گیا ہے اور اسے کچھ دیشوں میں نریات بھی کیا جا رہا ہے۔
کمپیوٹر سیمولیشن دوارا شوتکرتا دنیا کے سب سے شکتیشالی پدارتھ کا نرکشن کرنے میں سکشم رہے۔ اس پدارتھ کو پرمانو پاستا کہا جاتا ہے۔ یہ پدارتھ نیوٹران سٹار شیل میں استھت ہوتا ہے اور بہت گھنے سنچارنوں کے روپ میں آتا ہے جو وبھن پرکار کے پاستا کے سمان ہوتے ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی اور کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے شوتکرتاؤں نے سپر کمپیوٹر کا اپیوگ کر کے سیمولیشن کا پردرشن کیا۔ یہ سیمولیشن پہلی بار سٹار سیل کو توڑنے کے طریقوں کو سامنے لانے میں سفلتا اس نے حاصل کی ہے۔ ان کے انوسار یہ انوکرن منشیوں کو گروتواکرشن ترنگوں جیسی بڑی کھگولیا گھٹناؤں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے میں مدد کرے گا۔
میگل وشو ودیالیہ کے ایک شوتکرتا کے انوسار نیوٹران اسٹار شیل کی طاقت وشیش روپ سے شیل کے نچلے حصے سے وبھن کھگولیا سمسیاؤں سے جڑی ہے۔ نیوٹران تارے سپر نووا کے اتپاد ہیں اور بہت ہی گھنے ہوتے ہیں۔ ان تاروں کی کوشوں کے نیچے پروٹون اور نیوٹران ایک ساتھ سلنڈر اور فلیٹ پلیٹ جیسی سنرچناؤں کے روپ میں ویوستھت ہوتے ہیں۔ یہ گول کور پاستا کو بہت سخت بناتے ہیں، اور پریڑام سوروپ اسے توڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیمولیشن کے انوسار ان سنرچناؤں کو توڑنا اسٹیل کو توڑنے کی تلنا میں 10 ارب گنا کٹھن ہے۔ دوستوں، کاریکرم کا سمے پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
ان کی ہندی سیوا ہے۔ شروتا، ہمارے پرساروں کو آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمیں آشا کرتے ہیں کہ ہمارا پریاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کارکنوں کے بارے میں اپنے وچاروں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرواتے رہیے۔ تو اگلے ہی سبھا تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.